नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 12 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान कल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का काम आज शाम समाप्त हो रहा है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया। 29 अप्रैल को दिन में 11 बजे तक मांगा जवाब। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक देश के पूर्वी भाग और दक्षिणी प्रायद्वीप में भीषण गर्म हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 तथा मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में कुल 1,198 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के शेष भाग के लिए भी मतदान इसी चरण में होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल संसदीय सीट पर दूसरे चरण में होने वाले मतदान को अगले चरण के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का निधन हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुरैना में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार बिना किसी जाति और धर्म का भेदभाव किए करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर दिया है, जो कि हर धर्म के लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिला है। इसके अलावा 11 करोड़ घरों में पीने के पानी का कनेक्शन भी दिया गया है।
भाजपा सरकार में चंबल, कालीसिंध, पार्वती लिंक परियोजना से सिंचाई की समस्या दूर होगी। पानी की समस्या को दूर करने के लिए हम मुंजरी बांध जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बना ग्वालियर श्योपुर रेलवे ट्रैक हो, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे अनेक काम इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं।
अपने संबोधन में श्री मोदी ने स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं की मदद करने की बात भी कही।
आज हम देश में लाखों स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की मदद कर रहे हैं। मोदी ने गांव गांव में शौचालय बनाकर माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा की। अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है।
श्री मोदी अब से कुछ ही देर में आगरा जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बाद में वो शाहजहांपुर जिले में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखीमपुर खीरी जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कन्नौज लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी के संयोजक आकाश आनंद आज दोपहर बाद वाराणसी में एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत ढंग से पेश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों का मत जानने के बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस ने भाजपा पर उन मुद्दों को उठाने का भी आरोप लगाया जिनका कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं जिक्र नहीं है। देश की प्रमुख लोकसभा सीटों की श्रृंखला में आज जानकारी मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट की।
मध्य प्रदेश में चौथे और राज्य के लिए अंतिम चरण में अब तक 58 उम्मीदवारों द्वारा 83 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। राज्य में चुनाव प्रचार भी चरम पर है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मुरैना जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल भी मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने भोपाल में रोड शो के साथ साथ सागर और बैतूल लोकसभा क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित किया था। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा संयुक्त रूप से उज्जैन, मंदसौर और देवास में प्रचार करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
केरल की 20 लोकसभा सीटों में से अधिकांश पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एक रिपोर्ट।
केरल में कुल 20 लोकसभा सीटों के लिए 194 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। इसके लिए 25,358 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 555 मतदान केंद्र विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों में जरूरी सुविधाएं और प्रतीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई है। चुनाव के लिए महिलाओं, दिव्यांगजनों की सुविधा अनुरूप केंद्र और पर्यावरण अनुकूल केंद्र तैयार किए गए हैं। आज सुबह से वोटिंग मशीनों और अन्य चुनाव सामग्री का वितरण शुरू कर दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कौल ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग कर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने की अपील की है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
असम में कल सिलचर, करीमगंज, नवांग, दीफू और दरांग उदालगुरी लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। करीब 50% मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग से निगरानी की जा रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, AIUDF, TMC और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट मैदान में हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1,351 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में गुजरात की 25, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14 और पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश की 9, गोवा और दादरा नगर हवेली की 2-2 तथा जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 29 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण में 13 मई को 9 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में मतदान होगा। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज पुणे में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें जातिगत जनगणना और किसानों के कल्याण के लिए अलग आयोग का वादा, प्रशिक्षुता का अधिकार और नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का पक्ष रखा गया है। पार्टी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन करती है और एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को नकारती है। शपथनामा नाम के घोषणा पत्र में कहा गया है कि उनकी पार्टी CAA, NRC और UAPA और अन्य कानूनों की समीक्षा करेगी और उनमें परिवर्तन का प्रस्ताव देगी। निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजकर इस महीने की 29 तारीख को दिन में 11 बजे तक जवाब देने को कहा है। पत्र में आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी मुख्य प्रचारक राजनीतिक संवाद के उच्च मानक स्थापित करें और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करें। कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम ने अपनी शिकायतों में श्री मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी भाषण पर आपत्ति व्यक्त की थी। वहीं भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल के कोट्टायम में दिए गए चुनावी भाषण पर आपत्ति जताई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन की कंपनी बाइट डांस को टिकटॉक ऐप को अमेरिका से हटाने या इस ऐप को अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है। ऐसी आशंका थी कि टिकटॉक चीनी अधिकारियों को यूजर डेटा तक पहुंच प्रदान कर सकता है। अमेरिकी सीनेट ने कल इस ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी। टिकटॉक ने इस कानून को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि वह इसे अदालत में चुनौती देगा। मौसम विभाग ने भारत के पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगले 5 दिनों के दौरान गर्म हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा कर्नाटक के अंदरूनी भागों में अत्यधिक गर्म हवाएं चलने की आशंका है। बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्मी के हालात बने रह सकते हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल से 28 अप्रैल तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शनिवार और रविवार को पूर्वोत्तर भारत में बारिश के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। इधर दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली में तेज हवाएं चलने और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 186 अंक के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों देवेंद्र प्रताप सिंह, तेजवीर सिंह और महेंद्र भट्ट को शपथ दिलाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जोर देकर कहा है कि भारत आतंकी फंडिंग का विरोध करने के लिए आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करना जारी रखेगा। श्री डोभाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च स्तर के अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी नेतृत्व शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दुनियाभर में नवाचार और स्थिरता के लिए नजरिया पेश करना, सर्वोत्तम विचारों और रणनीतियों को साझा करने के लिए उद्योग जगत से जुड़े लोगों को एक साथ लाना है। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसोचैम आईपीआर परिषद के अध्यक्ष प्रवीण आनंद ने बौद्धिक संपदा की शक्ति और पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। यह मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हैदराबाद 7 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए आरसीबी के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। आरसीबी 8 में से 7 मैच हारकर अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है। दुबई में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीत लिया है, जबकि 3 अन्य एथलीटों ने रजत पदक जीते हैं। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में प्रियांशु ने रजत पदक हासिल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 12 राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान कल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का काम आज शाम समाप्त हो रहा है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया। 29 अप्रैल को दिन में 11 बजे तक मांगा जवाब। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक देश के पूर्वी भाग और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भीषण गर्म हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।